शांति ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि सदा हर्षित मुख रहना है, लेकिन हर्षित मुख रहने के लिए कौन सी युक्ति को अपनाना है वो बाबा ने बताया है। बाबा ने कहा कि जब बाप, टीचर और सतगुरु की स्मृति रहेगी तो चेहरा सदा हर्षित रहेगा। जैसे अव्यक्त बाप दादा की हमने मुरली सुनी थी, बाबा ने उस समय भी कहा था बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है और सतगुरु से क्या मिलता है। बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से श्रेष्ठ शिक्षा मिलती है, सतगुरु से वरदान मिलते हैं। तो आज भी बाबा ने कहा कि अगर ये तीन स्मृतियां रहेंगी तो तीन स्मृतियों से क्या होगा, चेहरा जो है हर्षित मुख रहेगा, सदा खुश रहना है और खुशियां बांटते रहना है। और दूसरी बात बाबा ने कही कि बाप जो है वो तुम्हारा अविनाशी वैद्य है। जैसे वैद्य लोग दवाई देते हैं ना, एक ही पुड़िया देते हैं और वो पुड़िया के बाद कहेंगे ये दवाई का असर होगा, जो अंदर की बीमारी है वो बाहर निकलेगी। ऐसे बाबा ने कहा बाप एक ही महामंत्र देते हैं, कौन सा, मन मना भव मुझे याद करो। लेकिन जब तुम बाबा को याद करते हो, मन मना भव के मंत्र को याद करते हो, तो फिर माया बहुत तंग करती है, माया पछाड़ती है। बाबा ने कहा माया क्यों पछाड़ती है, उसका कारण क्या है कि आप लंबे समय से माया के ग्राहक रहे हो और माया के ग्राहक जब उससे छूटने लगते हैं तो वो तड़फती है, फिर पछाड़ती है। बाबा ने कहा कि माया के तूफानों से डरना नहीं है, वो तूफान आएंगे लेकिन तुम बच्चों को डरना नहीं है। फिर तीसरी बात बाबा ने कही कि देखो रावण जो है कितना बड़ा दुश्मन है, दुनिया के लिए आम और खास भारत के लिए रावण जो है बहुत बड़ा दुश्मन है, उसको हर वर्ष जलाते ही रहते हैं। कभी देखा कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हर वर्ष जला देते हैं, एक बार जला दिया तो खत्म हो गया, लेकिन इसको तो हर वर्ष ही जलाते रहते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत दुख देता है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 18 नवंबर 2024, मुरली का मुख्य हेडिंग मीठे बच्चे बाप है अविनाशी वैद्य, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। मीठे बच्चे बाप है अविनाशी वैद्य, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देता है। आज का प्रश्न है माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है, कोई कारण तो बताओ। कहते ना बाबा माया आ जाती है, माया विघ्न डालती है, ये करते माया आती है। तो बाबा कहते हैं माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है, कोई कारण बताओ। इसका उत्तर है क्योंकि तुम माया के बड़े से बड़े ग्राहक हो। माया के बड़े से बड़े ग्राहक रहे ना, उसकी ग्राहकी खत्म होती है इसलिए विघ्न डालते। कौन सी बात, तुम माया के बड़े ग्राहक हो, उसकी ग्राहकी खत्म होती है इसलिए विघ्न डालती है। जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देते हैं तो माया की बीमारी उथलती है। जैसे भी होता है ना, वैद्य दवा देता बताता है कि दे रहा हूँ लेकिन बीमारी अंदर की बाहर आएगी। जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी उथलती है, इसलिए विघ्नों से डरना नहीं है। मन मना भव के मंत्र से माया भाग जाएगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं मनुष्य मन की शांति मन की शांति कहे हैरान होते। याद है ना बाबा ने उस दिन क्या कहा, जब मन जीत जगत जीत बनना है, तो मनुष्य तो कहते ही रहते लेकिन बाबा के बच्चे क्या बनते हैं, जगत जीत बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य मन की शांति कहे हैरान होते हैं। रोज कहते हैं ओम शांति, रोज कहेंगे हमको शांति चाहिए, हमको शांति चाहिए, लेकिन मिलती नहीं है ना। रोज कहते हैं ओम शांति, परंतु उसका अर्थ ना समझने के कारण शांति मांगते रहते हैं। कहते भी हैं आयम आत्मा, अर्थात आयम साइलेंस, हमारा स्वधर्म है साइलेंस। फिर जबकि स्वधर्म शांति है तो फिर मांगना क्यों, क्योंकि अपने धर्म को भूल गए ना। तो बाबा कहते स्वधर्म शांति है तो फिर मांगते क्यों है, जबकि स्वधर्म शांति है तो फिर मांगना क्यों। अर्थ न समझने के कारण फिर भी मांगते रहते हैं। तुम समझते हो ये रावण राज्य है, तुम समझते हो ये रावण राज्य है, परंतु तो ये भी नहीं समझते कि रावण सारी दुनिया का आम और भारत का खास दुश्मन है, इसलिए रावण को जलाते रहते। रावण का जलाना केवल भारत में होता है, विदेशों में तो रावण को जलाते नहीं है। कहाँ कहाँ भारतवासी हैं, कुछ ऐसे हैं कोई भारतवासी वहां पर है, थोड़ा बहुत करते होंगे, लेकिन रावण को जो जलाते हैं बहुत धूमधाम से, वो भारत में ही होता है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य है बाबू जी, ऐसा कोई मनुष्य है जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं? इनको तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जलाते आए हो, क्योंकि ये तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। क्यों इसको बाहर वर्ष जलाते हैं? बाबा कहते ये जो है तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। पांच विकारों में सब फंसे हैं, जन्म ही भ्रष्टाचार से होता, पैदा होते ही तो देखो क्या हालत है। तो रावण का राज्य हुआ ना, इस समय अथाह दुख है, इसका निमित्त कौन है? अब इतने दुखों का निमित्त कौन है? बाबा कहते रावण, ये तो कोई को पता नहीं कि दुख किस कारण से होता, इतने दुख हैं, रावण ने क्या क्या किया दुनिया में कोई भी नहीं जानते, ये कोई को पता नहीं कि दुख किस कारण से होता है। ये तो राज्य ही रावण का है, सबसे बड़ा दुश्मन ये है, हर वर्ष उसकी FG बना करके जलाते रहे। पहले होता था छोटा, फिर उससे बड़ा बड़ा, अभी बड़े से बड़ा बनाते ही जाते, इतना बड़ा बनाते, उसके अंदर कितने खर्चा होता है, कितने बॉम्ब्स डालते हैं, कितना फटाका होता है और कितना एनवायरमेंट का पॉल्यूशन होता है। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन और ही बड़ा बनाते जाते, दुख भी बढ़ जाता है। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्मा आदि हैं, परंतु एक को भी पता नहीं कि रावण हमारा दुश्मन है। साधु संत महात्मा राजा हैं, कितने भी बड़े VIP हैं, किसको पता नहीं कि रावण हमारा दुश्मन है। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्मा राजाएं आदि हैं, परंतु एक को भी पता नहीं कि रावण हमारा दुश्मन है, जिसको हम वर्ष वर्ष जलाते हैं और फिर खुशी मनाते हैं, समझते हैं रावण मरा और हम लंका के मालिक बने। आजकल तो ऐसा नहीं करते, बचपन की बातें याद है, बचपन में जाते थे खास रावण को जलाने देखने के लिए, उस समय सब लोग क्या करते थे, बोला कि लंका लूट के आए, लंका लूट के आए हैं, फिर वो क्या करते थे, पीले पत्ते पीले फूल के पौधा होता था, वो सब के सब क्या करते, पीले फूल का तोड़ के आते थे, समझते ये रावण की लंका को लूट के आए हैं। ये पता नहीं कि रावण की लंका में सब दुख हैं और हमारी राजधानी तो गोल्डन होगी। उस समय हमको याद है कि सब लोग पीले पत्ते के डंडियां लेके, पीले फूलों की डंडियां लेकर के आते थे, वो कहते हैं लंका लूट के आए हम। तो बाबा कहते हैं फिर खुशी मनाते समझते रावण मना, हम लंका के मालिक बने, परंतु मालिक तो बनते ही नहीं है। कितना पैसा खर्च करते हैं, बाप कहते हैं तुमको इतने अनगिनत पैसे दिए, वे सब कहाँ गवाए। वे क्या करते हैं, दशहरे पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, रावण को मारकर फिर लंका को लूटते। अब रावण को मारा, लंका तो है ही नहीं, यहाँ पर लंका को क्या लूटेंगे, समझते हम लूट के आए। रावण को मारकर फिर लंका को लूटते हैं, कुछ भी समझते नहीं, रावण को क्यों जलाते हैं। इस समय सब इन विकारों की जेल में पड़े हैं, आधा कल्प रावण को जलाते हैं क्योंकि दुखी हैं। समझते भी हैं कि रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हैं, ये नहीं समझते कि सचिव में ये पांच विकार होते ही नहीं। उनको ये भी पता नहीं है कि वहाँ विकार नहीं होता है, वहाँ पर दुख नहीं होता है, यहाँ पर तो कितना दुख है, वो भी नहीं समझते कैसा हुआ। ये भी नहीं समझते कि सचिव में ये पांच विकार होते ही नहीं है, ये रावण आदि को जलाना होता ही नहीं। सचिव में ना रावण है, ना जलाती है, ना पांच विकार है, ना ऐसी रीति रस्म है, ये रावण को जलाना होता ही नहीं। पूछो ये कब से मनाते आए हो, अगर भक्तों से औरों से पूछेंगे ना कब से मनाते आए हो, कहेंगे ये तो अनादि चला आता है। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, कहेंगे अनादि चला आता है। कोई काम समझ की बातें ही नहीं, क्या क्या बोलते रहते, कितना समझाओ वो बुद्धि में बैठता नहीं है। तो बाबा कहते ये बातें कोई समझ की नहीं है, कोई काम सब समझ की बातें हैं ना, मनुष्य की बुद्धि क्या बन गई है, अब मनुष्य की हालत क्या है। बाबा कहते ना जानवर है ना मनुष्य, जानवर तो फिर भी चलो इशारे को समझ जाता है, मनुष्य को इशारा दो वो भी नहीं समझता, समझाओ तो भी नहीं समझता है। तो बाबा कहते हैं न जानवर है न मनुष्य है, कोई काम की नहीं, स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते नहीं है, समझते हैं बस यही दुनिया भगवान ने बनाई। वो समझते दुख सुख सब कुछ भगवान देता है, वो समय तो भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई, दुख भी है सुख भी है, लेकिन स्वर्ग में दुख होता ही नहीं है। तो समझते ही बस यही दुनिया भगवान ने बनाई, दुख में याद तो फिर भगवान को करते हैं, हे भगवान इस दुख से छुड़ाओ। परंतु कलयुग में कोई सुखी हो ना सके, दुख तो जरूर भोगना ही है, सीढ़ी उतरनी ही है, नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के सब राज बाप समझाते। सचिव में क्या था, त्रेता में क्या था, फिर द्वापर में क्या हुआ, कलयुग में क्या हुआ, फिर संगम युग से कैसे सचिव में जाते हैं। तो बाबा कहते सारा राज सारा चक्र जो है केवल बाप ही समझाते हैं। बच्चों पास आते हैं, कितनी बड़ी बात, बाबा खुद बच्चों के पास आते हैं तो बोलते हैं कि सब दुखों की दवाई क्या है, याद है दवाई पूरी कहाँ है, आयुर्वेद वाला पुड़िया देते हैं जेब में डाल देते हैं फिर याद रखते हैं, तो कौन सी पुड़िया दी आज बाबा ने, सब दुखों की दवाई है मन मना भव। ये एक अविनाशी वैद है ना, 21 जन्मों के लिए सबको दुखों से मुक्त कर देते हैं। वह वैद लोग तो खुद भी बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर से इलाज करते हैं, उनको भी कोई ना कोई प्रकार की कभी ना कभी बीमारी लग जाती है, वैद भी होते हैं दवा करते इतनों का शफा करते, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ बीमारी तो लग जाती है ना। तो बाबा कहते वैद लोग तो खुद भी बीमार हो जाते हैं, ये तो है अविनाशी वैद, ना कभी बीमार होता है और ही बीमारी से दूर करता है, तो ये है अविनाशी वैद। ये भी समझते हो कि दुख भी अथाह है और सुख भी अथाह है, यहाँ दुख अथाह है सचिव में सुख अथाह है, बाप अथाह सुख देते हैं, वहाँ तो दुख का नाम निशान भी नहीं होता है। सुखी बनने की एक ही दवाई, आज बाबा बहुत पक्का करा रहे हैं, सुखी बनने की एक ही दवाई है मन मना भाव। सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। पावन भी बनेंगे, सतो प्रधान भी बनेंगे और सब दुख दूर हो जाएंगे। फिर सुख ही सुख होगा। गाया भी जाता है बाप की महिमा क्या, दुख हरता सुख करता। गाया भी जाता है बाप दुख हरता सुख करता है। आधा कलप के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आधा कलप के लिए दुखों को दूर करने के लिए क्या करना है, बाबा ने सहज युक्ति बताई कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा और जीव दो का खेल, कभी बाबा कहते हैं हार और जीत का खेल है, खुश सुख और दुख का खेल है। और आज बाबा ने क्या कहा, आत्मा और जीव दो का खेल। शरीर नहीं है तो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती है, आत्मा शरीर है आत्मा नहीं है तो वो भी कुछ नहीं कर सकता है, तो दोनों का खेल है। आत्मा और जीव दो का खेल है। निराकार आत्मा अविनाशी है और साकार शरीर विनाशी है, इनका ही खेल है। आत्मा आई तो कितने बड़े बड़े पार्ट बजाती है, कितना सारा काम करती है, सारे सृष्टि चक्र में चक्कर लगाती है। कलयुग के अंत के में भी देखो आत्मा ही तो इतनी बड़ी इन्वेंशन कर रहे। आज जो साइंस इतना इन्वेंशन हो रहा है, साइंस कौन कर रहा है, आत्मा ही तो कर रही है ना। तो बाबा कहते हैं इनका खेल है। अब बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि अब हमको वापिस जाना है। पति तो जा न सके तो क्या करना पड़ेगा, पति तो रहेंगे तो फिर नहीं जा सकते, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। तो इसके लिए बाबा ने क्या कहा, इसकी युक्ति है माम एकम याद करो। पति तो जा न सके इसलिए माम एकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप के पास दवाई है ना, आज बहुत अच्छी दवा मिल रही है ना, तो बाबा कहते बाप के पास दवाई है ना, ये भी बताता हूँ माया जरूर विघ्न डालेगी। वैद्य पहले से कह देता दवा दे रहा हूँ डरना नहीं। बहुत कई बार होता है वैद्य की दवा लेते इतना रिएक्शन होता है, रिएक्शन इतना वो बीमारी बाहर आती है, बहुत ज्यादा बीमार आती है बाहर। तो इसी बाबा भी क्या कहते हैं, ये भी बताता हूँ कि माया जरूर विघ्न डालेगी। क्यों, क्योंकि तुम रावण के ग्राहक हो ना, उनकी ग्राहक की चली जाएगी तो जरूर फटकेगी। फटकना मीन्स परेशान होना, कोई परेशान होता ऐसे फट फट चलता। कभी कोई परेशान व्यक्ति को देखो ना, चलता हो बोलता रहेगा, चलता हो उसके हाथ चलते रहेंगे, चलता हो ऐसे ऐसे करता रहेगा, चल रहा है लेकिन उसके हाथ ऐसे चले फट फट करता रहता है। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, उनकी ग्राहकी चली जाएगी तो जू फटकेगी अर्थात परेशान होगी। तो बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है ना, कोई दवाई नहीं है, दवाई ये है याद की यात्रा। पढ़ाई भी है दवा भी है, दवाई है याद की यात्रा। एक ही दवाई से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अगर मेरे को निरंतर याद करने का प्रसारित करेंगे तो एक ही दवा कौन सी है, बाप को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करना। अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हैं जिनका मुख चलता ही रहता। भक्ति में क्या करते थे, राम 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 करते थे ना, तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हैं जिनका मुख चलता ही रहता है। कोई न कोई मंत्र राम नाम जपते रहते हैं, उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ। देखा ना भक्ति माने में क्या करते हैं, कहीं तो मंत्र जपते ही रहते हैं और हाथ में पोटली लेकर बैठे रहते हैं, माला गिनते रहते हैं और राम राम कहते ही रहते हैं। कहते हैं हमको गुरु का मंत्र मिला है, उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ है, इतना बार तुमको रोज जपना है। कई बार गुरु कह देते हैं 1000 बार 1 लाख बार, वो लगे ही रहते हैं, इतना बार तुमको रोज जपना है, राम राम जपते रहते हैं। उनको कहते हैं राम के नाम की माला जपना। वो जो राम का गुरु मंत्र है ना, तो क्या कहते हैं, राम के नाम की माला जपना, इसको राम नाम का दान भी कहते हैं। ऐसी बहुत संस्थाएं बनी हुई हैं, राम राम जपते रहेंगे तो झगड़ा आदि नहीं करेंगे, बिजी रहेंगे। अब राम राम कर रहे हैं, कई तो फिर ऐसे होते हैं राम राम माला जपते जपते उनको आ जाता है गुस्सा, बीच में गुस्सा भी कर लेते हैं, बीच में कोई ना कोई बात कर फिर लग जाते हैं। फिर कई ऐसे पहले जमाने के भगत अच्छे होते थे जो माला जपते थे, कोई बीच में झगड़ा नहीं करते थे। आजकल तो माला क्या जपेंगे, बीच में कोई ना कोई बात करते ही रहते हैं। उनको कहते राम नाम की माला जपना, इसको राम नाम का दान कहते हैं। ऐसी बहुत संस्थाएं बनी हुई है, राम नाम जपते रहेंगे तो झगड़ा आदि कोई करेंगे नहीं, बिजी रहेंगे, कोई कुछ कहेगा तो भी रेस्पॉन्स नहीं देंगे। भक्ति में आगे होता था, कोई भक्ति चल रही है, कोई बोलते थे तो उसका जवाब नहीं देते थे, लेकिन आजकल तो वो करते ही रहते दे देते हैं। कोई कुछ भी कहेगा तो भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, बहुत थोड़े ऐसा करते हैं। यहाँ भी बात समझाते हैं, राम राम कोई मुख से नहीं कहना। फिर बाबा और भी कहते हैं ना, शिव शिव कई बार कहते हैं ना, माताएं आती मुख से क्या बोल, शिव 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 करती रहती। बाबा कहते शिव शिव भी नहीं कहना, राम राम भी नहीं कहना, अंदर ही अंदर बाबा को प्यार से याद करना है। यहाँ फिर बाप समझाते हैं, राम राम कोई मुख से नहीं कहना है, ये तो अजप्पा जाप है, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बाप कहते हैं मैं कोई राम नहीं हूँ, राम तो त्रेता का था, जिसकी राजाई थी उनको तो जपना नहीं है। राम राजे त्रेता में था, उसकी राजधानी थी, तो बाबा कहते उसको थोड़ी जपना है। अब बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में ये सब सिमरन करते पूजा करते तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, क्योंकि ये वह सब है अनराइटियस। अब बाप समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में ये सब सिमरन करते पूजा करते तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, क्योंकि वह सब है अनराइटियस। राइटियस तो एक ही बाप है, वह तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं ये कैसे भूल भुलैया का खेल है। बाबा ने आज क्या पहले बोला कि आत्मा और जीव का खेल है, फिर दूसरा क्या बोला कि ये भूल भुलैया का खेल है। कहां अपने को आत्मा समझा, कहां भूल गए। तो बाप समझाते हैं ये कैसे भूल भुलैया का खेल है, जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता है उनको याद करें तो क्या होगा, क्या होगा, तो चेहरा ही चमकता रहेगा। जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता है उनको याद करें तो चेहरा ही चमकता रहे, खुशी में चेहरा खिल जाता। कोई खुश होता है तो देखो ना क्या हाल होता है, इतना अच्छा खुशी में रहते हैं तो देख के देखने वाले को भी खुशी हो जाती। तो बाबा कहते खुशी में ही चेहरा खिल जाता है, मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो तुम जानते हो बाप को याद करने से हम ये बनेंगे, ये मीन्स लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण का चेहरा इतना सुंदर, इतना खुश नमा दिखाते ना, तो बाबा कहते तुम भी बाबा को याद करेंगे तो फिर ऐसा बनेंगे। तुम जानते हो कि बाप को याद करने से हम ये बनेंगे, आधा कलप के लिए हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा कुछ कृपा कर देंगे, आते हैं ना कई कई बच्चे कहते हैं बाबा कुछ कृपा करो बाबा, मेरा ये काम कर दो बाबा, ये हो जाए बाबा, किसी पुरुषार्थ तुमको करना है। नए नए आते थे भगत लोग आते थे, कई बार नए नए बच्चे आते थे, बाबा को कहते बाबा अपना हाथ हमारे सिर पे रखो, हमारे पे कृपा हो जाएगी। बाबा कहते थे देखो ये भगत आ गया। बाबा कहते भगत नहीं बच्चे हो, तो बच्चे में से अधिकारी हो। ऐसे नहीं बाबा कुछ कृपा कर देंगे, नहीं, ये समझाना है हम बाप को जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कितने हर्षित मुख है। साकार में बाबा क्या करते थे, लक्ष्मी नारायण के चित्र के पास जाके बैठते थे, बाबा देखते थे कितने हर्षित मुख है, तो बाबा को भी नशा होता था कि मैं भी जाके ऐसा बनूंगा। तो श्री बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कितने हर्षित मुख है, ऐसा बनना है। बेहद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है कि फिर से हम विश्व के मालिक बनेंगे। ये आत्मा की खुशी के संस्कार ही फिर साथ चलेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता। जब सतयुग में आ गए बहुत खुश, फिर धीरे धीरे खुशी कम होने लगती, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी, बाबा ने पहले ही बता दिया, डरना नहीं। इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी, माया कोशिश करेगी तुम्हारी याद को भुलाने की। कई बच्चे आते कहते क्या करे बाबा को भूल जाते, अरे बाबा को भूल जाते वंडरफुल है, बाबा भी हंसते। बाबा को कहते बाबा को भूल जाते, अरे बाबा बाबा तो बोल रहे भूले कहाँ। फिर बाबा बता भी देते हैं माया भटकाएगी, माया कुछ कुछ करेगी। तो बाबा कहते हैं माया कोशिश करेगी तुम्हारी याद को भुलाने की, सदैव ऐसा हर्षित मुख रह नहीं सकेगी। तूफान आएंगे माया तो खुशी गायब हो जाएगी ना, फिर सदा तो हर्षित मुख नहीं रह सकेंगे, सदैव ऐसे हर्षित मुख रह नहीं सकेंगे। जरूर कोई समय गुटखा भी खाएंगे, बाबा को पता है ना कैसी अवस्था होती है। मनुष्य जब बीमार पड़ते हैं तो उनको भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा है कौन। कई बार ज्ञानी परिवार होते हैं ना, तो उनके घर में बच्चा कोई बीमार होता है, उनको थोड़ा थोड़ा तो मालूम होता है, फिर भी वो कहते शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद। वो याद क्या करेंगे, उसको पूरा प्यार ही नहीं बाबा से, कहीं तो फिर भी कर लेते हैं, बहुत कुछ अनुभव हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य जब बीमार पड़ते तो उनको कहते भी होंगे शिव बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा है कौन ये किसको पता ही नहीं, तो क्या समझ याद करें, क्यों याद करें। तुम बच्चे तो जानते हो कि बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारी याद और बाहर की याद में कितना अंतर है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा को, और ये भी पता है याद करेंगे तो माया जो है वो भाग जाएगी, पतित से पावन बन जाएंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। देवी देवता सतो प्रधान है ना, उनको कहा ही जाता है डीटी वर्ड, मनुष्य जो मनुष्य की दुनिया नहीं कहा जाता, सत्यों को कहते हैं डीटी वर्ड, देवताओं की दुनिया, और वहां पर उसको भल मनुष्य है लेकिन उसको मनुष्यों की दुनिया नहीं कहेंगे, मनुष्यों की दुनिया नहीं कहा जाता है, मनुष्य नाम होता ही नहीं। आप सच्चे में एक और नई पॉइंट, मनुष्य नाम ही नहीं होगा। कभी कभी कहते हैं ना सच्चे में क्या नहीं होगा, बाकी तो सब कुछ होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो बाबा ने कहा मनुष्य नाम होता ही नहीं। फलाना देवता है, वह है ही डीटी वर्ल्ड, और ये है ह्यूमन वर्ल्ड। आज की दुनिया ह्यूमन वर्ल्ड और वो है डीटी वर्ल्ड, वैसे भी कहते ना ह्यूमैनिटी, ह्यूमन लोग है यहाँ पर, ये है ह्यूमन वर्ल्ड। ये सब समझने की बातें हैं, बाप ही समझाते हैं। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर, बाप अनेक प्रकार की समझाने देते रहते। बाबा बताते हैं कैसे कैसे समझाते हैं, कई कई युक्तियों से बच्चों को समझाते हैं, ताकि बच्चों की बुद्धि में बैठे। तो बाबा कहते बाप अनेक प्रकार की समझाने देते रहते, फिर भी पिछाड़ी में महामंत्र देते हैं। कौन सा? बाप को याद करो तो तुम तबो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कल पहले भी तुम देवी देवता बने थे, तुम्हारी सीरत देवताओं जैसे थे। वह मनुष्य शक्ल है लेकिन एक्चुअली सूरत और सीरत दोनों देवताओं जैसी थी। वहां कोई भी उल्टा सुल्टा बोलते ही नहीं थे। वहां कैसे रिस्पेक्ट से बोलेंगे, बहुत रॉयल्टी से बोलेंगे, बहुत सॉफ्ट बोलेंगे। यहाँ पर तो कहीं की आदत होती ना, बात करेंगे इतना जोर जोर से। अरे भी जोर जोर से क्यों करें, बोलेंगे जोर से। कहना जो बात है उसको धीरे से भी बोल सकते हैं। इतना जोर से बोलेंगे, एक ही बात कहने आएंगे। तो बाबा कहते वो संस्कार जो है ना अभी से धारण करना है, क्योंकि वहां पर कोई भी उल्टा सुल्टा बोलते नहीं थे। ऐसा कोई काम होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वह है ही डीटी वर्ल्ड और ये है ह्यूमन वर्ल्ड। फर्क है ना, ह्यूमन वर्ल्ड में क्या है, हर समय जोर से बोलेंगे, हर समय चिल्लाएंगे, बात भी करेंगे ऐसे ऐसे हाथ करेंगे, इशारा करते रहेंगे, कैसे जोर जोर से कह करके इतना जोर से बात करते, लेकिन बात क्या कहना वो पता ही नहीं। तो बात जो कहनी है वो एक लाइन में बोलो, दो लाइन में बोलो, क्या कहना चाहते हो तो समझे कोई। नहीं तो बहुत ज्यादा बोलते हैं तो बोलने का स्टाइल भी इतना ऊंचा होता है जिसको बाबा कहते हैं रॉयल्टी नहीं है। क्योंकि सचिव में जाना है तो फिर रॉयल भी तो बनना होगा ना। तो बाबा कहते हैं वह है ही डीटी वर्ल्ड और ये है ह्यूमन वर्ल्ड, फर्क है ना। तो ये बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो समझते हैं कि डीटी वर्ल्ड को लाखों वर्ष हो गए हैं, यहाँ तो कोई को देवता कह नहीं सकते। देवता तो स्वच्छ थे, महान आत्मा देवी देवता को कहा जाता। अब महात्मा भल यहाँ है, पवित्र रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं महान आत्मा देवी देवता को कहा जाता है। मनुष्य को कभी भी नहीं कह सकते कि ये महान आत्मा है। ये है रावण की दुनिया। रावण बड़ा भारी दुश्मन है, इन जैसा दुश्मन कोई होता ही नहीं। कहेंगे ना ये दुश्मन है, वो दुश्मन, दुश्मन बनते कैसे? उसमें रावण की प्रवेशता हुई तब तो दुश्मन है ना। कभी कभी कह देते ना ये मेरा दुश्मन है, वो दुश्मन नहीं है, उसके अंदर रावण की प्रवेशता हुई है, वही दुश्मन है। तो बाबा कहते इन जैसा दुश्मन कोई होता नहीं। हर वर्ष तुम रावण को जलाते हो, परंतु वह है कौन, किसको पता ही नहीं है। कोई मनुष्य तो है नहीं। ये है पांच विकार, इसलिए इसको रावण राज्य कहा जाता है। पांच विकारों का राज्य है ना, सब में पांच विकार है। ये दुर्गति और सदगति का खेल बनाओ। अब तीसरा टाइटल क्या दिया, पहले कौन सा बताया तो कौन सा खेल याद है, आत्मा और जीव, दूसरा भूल भुलैया का खेल, और तीसरा बाबा ने क्या बताया, दुर्गति और सदगति का खेल। तो आज तीन टाइटल दिए खेल के नाम। ये दुर्गति और सदगति का खेल बना हुआ है। अभी तुमको सदगति की टाइम आदि का भी बाप ने समझाया है और दुर्गति का भी समझाया है। तुम ही ऊंच चढ़ते हो और फिर तुम ही नीचे गिरते हो। शिव जयंती भी भारत में होती है और क्या होता है, बाबा ने कहा रावण जयंती। अब रावण की जयंती मनाते हैं ना, उसका सेलिब्रेशन करते हैं। इतना बड़ा सेलिब्रेशन तो और किसी का नहीं होता जितना कि रावण को जलाने का सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए उसको बाबा कहते हैं रावण जयंती भी भारत में होती है। आधा कलप है दैवी दुनिया, लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य। अभी तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो, महिमा सारी तुम्हारी है, नवरात्रि पर पूजा आदि सब तुम्हारी होती। नवरात्रि पर देवियों की पूजा करती ना, तो बाबा ने बच्चों को बनाया है, उसी स्वरूप में लाए हैं। तो बाबा कहते नवरात्रि पर जो पूजा है ये सब तुम्हारी होती है, तुम ये स्थापना करते हो। श्रीमत पर चल, तुम विश्व को चेंज करते हो, तो श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। कितनी अच्छी बात, बाबा ने कहा श्रीमत पर चल के ही विश्व को चेंज करते हो, तो क्या करना है, श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। नंबर वन पुरुषार्थ करते रहते हैं, स्थापना होती रहती है, इसमें तो लड़ाई आदि की कोई भी बात नहीं है। अभी तुम समझते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है ही बिल्कुल अलग, पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की आदि। पुरुषोत्तम संगम युग क्या है, पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया की आदि। बाप आते ही हैं पुरानी दुनिया को चेंज करने। तुम समझाते तो बहुत है, परंतु बहुत है जो भूल जाते। बाबा कहते तुमको समझाते बहुत है, बाबा इतना समझाते फिर भी बहुत ऐसे बच्चे जो भूल जाते। तुमको समझाते तो बहुत है, परंतु बहुत है जो भूल जाते। भाषण के बाद स्मृति आती है, ये पॉइंट समझाने थे। बाबा भाषण के टाइम पर बाबा बच्चों को बताते थे कि भाषण करने से पहले 5 पॉइंट्स नोट कर लो और करने से पहले उसको रिवाइज कर लो। फिर कई बार कुछ न कुछ बुद्धि में और बातें आ जाती थी, फिर वो बातें भूल जाती, फिर आके कहते अरे मेरे को तो ये भी बात समझानी थी, मेरे को ये भी बात समझानी, मैं तो भूल गया। तो बाबा वही बता रहे हैं। तो भाषण के बाद स्मृति आती है, ये पॉइंट समझानी थी। हूबहू कलप कलप जैसी स्थापना हुई थी वैसे होती रहेगी, जिन्होंने जो पद पाया है वही पाएंगे। सब एक जैसा पद तो पा नहीं सकते हैं, ऊंच से ऊंच पद वाले भी हैं तो कम से कम पद पाने वाले भी। बाबा को पता ऊंच पद भी पाने वाले हैं और कम पद भी पाएंगे। जो अनन्य बच्चे हैं वे आगे चलकर बहुत फील करेंगे। क्या फील करेंगे, कि ये साहूकारों की दासी बनेगी, ये राजाई घराने की दासी बनेगी। आप सबने शुरू में सुना ना, शुरू शुरू यज्ञ जब स्थापन हुआ उसमें बहुत सी बहनें ट्रांस में जाती थी और जो संदेशी जाती थी वो आकर के बताती थी ये बहुत अच्छे पुरुषार्थ के, बाहरी पुरुषार्थ वाले बहुत अच्छे हैं। वो आकर के सीधा बोलती थी ये दासी बनेगी, ये ऐसे बनेगी। तो बाबा ने बंद करा दिया, बाबा ने कहा अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पुरुषार्थ भी करना छोड़ देंगे, उसको तो नशा है कि मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते। वो हुआ बाहरी पुरुषार्थ, लेकिन अंदर का पुरुषार्थ नहीं है। तो बाबा ने उसमें बंद करा दिया था और बाबा ने अभी बता दिया कि लास्ट में जब हमारी पुरुषार्थ की अच्छी स्टेज होगी तो ऑटोमेटिकली फीलिंग आएगा कि हमारा पद क्या होगा। कहने की जरूरत नहीं कि तुम ये बनोगे ये तुम बनोगे, हर एक को अपनी ही फीलिंग आएगी हमारा पद क्या है, कहने की भी बात नहीं रहेगी। तो आगे चलकर फील करेंगे ये साहूकारों की दासी बनेंगे, ये राजाई घराने की दासी बनेंगे, ये बड़े साहूकार बनेंगे जिनको कब कब इनवाइट करते होंगे। अभी भी होता है बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो क्या होता है वीआईपीस को इनवाइट करते, रोज तो नहीं आते ना। ऐसे जो बड़े बड़े साहूकार होंगे जो बड़े विशेष प्रोग्राम होंगे उनको कभी कभी इनवाइट भी करेंगे। सबको थोड़ी इनवाइट करेंगे, सब थोड़ी मुंह देखेंगे, सारी पब्लिक का भी। आजकल के जो पुराने जमाने लास्ट में भी राजा होते थे, साल में एक दिन होता था, जैसे नेपाल का राजा था साल में एक दिन होता था, सारी प्रजा को छुट्टी होती थी राजा के दर्शन करने की। अभी भी है तो सचिव में भी ऐसे होगा, प्रजा भी दर्शन करेगी लेकिन रोज रोज नहीं करेगी, वीआईपीस को स्पेशल प्रोग्राम पर बुलाएंगे। सबको थोड़ी इन्वाइट करेंगे, सब थोड़ी मुंह देखेंगे। बाप भी ब्रह्मा मुख से समझाते हैं, सम्मुख सब थोड़े ही देख सकेंगे। अभी तुम सम्मुख आए हो, कितने भाग्यशाली हैं, बाबा के सामने जो आए बाबा को सामने देखा और अभी भी आप सभी बाबा को सामने देखते ही हैं। बाद में आने वाले क्या देखेंगे, लास्ट में तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी देख ही नहीं सकेंगे। तो अभी बाबा कहते जितना लेना ले लो। तो बाबा कहते बाप ही ब्रह्मामुख से समझाते, सम्मुख सब थोड़ी देख सकेंगे। अभी तुम सम्मुख आए हो, पवित्र बने हो। ऐसे भी होता है जो अपवित्र आकर यहाँ बैठते, बाबा कभी कभी रहम दिल बन जाते थे। कभी कभी बाबा कहते थे अपवित्र को यहाँ नहीं बैठना, लेकिन आज बाबा रहम दिल हैं तो बाबा क्या कहते हैं, हम थोड़ा बहुत ज्ञान सुनेंगे तो पुरुषार्थ करेंगे। ऐसे भी होते हैं जो अपवित्र आकर यहाँ बैठेंगे, कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा ना, अब सुनेगा ही नहीं तो असर नहीं पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बार बार आता ही रहता था, कहता था बाबा मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकता हूँ, मैं धारणा नहीं कर सकता हूँ। तो एक बहन ने कहा कि तुम फिर क्यों आते हो यहाँ पर, कहता आऊंगा तब तो कुछ सुनूंगा, तब तो मैं धारण कर सकूंगा ना। आता भी रहता था, धारण भी नहीं करता था, लेकिन फिर बोला करता रहूंगा, आता रहूंगा। फिर धीरे 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 असर पड़ा, जाके बहुत टाइम के बाद ठीक हुआ। तो बाबा कहते हैं फिर देवता बन जाएंगे, फिर कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा, नहीं सुने तो फिर आवे ही नहीं। तो मूल बात बाप कहते हैं मन मना भव, इस एक ही मंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। मन मना भव ये बाप ही कहते हैं। फिर टीचर होकर कहते हैं, क्या कहते हैं, मध्याजी भव। बाप होकर के क्या कहते हैं, मन मना भव। टीचर होकर कहते हैं मध्याजी भव। टीचर भी है और गुरु भी है, बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तीनों ही याद रहे तो अवस्था कैसी रहेगी, तीनों ही याद रहे तो अवस्था बहुत ही हर्षित मुख रहेगी। तीनों ही याद रहे तो बहुत हर्षित मुख अवस्था रहे। बाप पढ़ाते हैं फिर बाप ही साथ ले जाते, बाप पढ़ाते भी हैं, बाप अपना बनाते हैं, पढ़ाते भी हैं और साथ ले जाते। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, कितना देते हैं, कितना याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बाप को कोई जानते ही नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं कि वह भगवान है, हम सब ब्रदर्स हैं। बाप से क्या मिलता है ये कुछ भी पता नहीं। भक्ति मार्ग में बाप को भगवान कहा, भाई कुछ मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा वो कुछ भी पता नहीं है। बाप से क्या मिलना है वह कुछ भी पता नहीं। तुम अभी समझते हो एक बाप है, हम उनके बच्चे सब ब्रदर्स हैं। ये बेहद की बात है ना, सब बच्चों को टीचर बन पढ़ाते हैं, फिर सबका हिसाब किताब चुकतू कराए वापिस ले जाएंगे। गुरु बन के क्या करते हैं कि सबका हिसाब किताब चुकतू कराए फिर वापिस ले जाते हैं। ये बेहद की बात है, सब बच्चों को टीचर बन पढ़ाते हैं फिर सबका हिसाब किताब चुकतू कराए वापिस ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया से वापिस जाना है ना, इसमें रहना है क्या। बाबा कहते आपको तो वापिस जाना है ना, नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बनाते हैं। जो जो लायक बनते हैं वह सतयुग में आते हैं। सतयुग में कौन जाएंगे, जो ज्ञान को सुनेंगे लायक बनेंगे। जो जो लायक बनते हैं वह सतयुग में आते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करना है। अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप, टीचर, सतगुरु तीनों को याद करना है। यहाँ से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। वर्षी की स्मृति से चेहरा सदा चमकता रहे। दूसरा, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करने। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है। पांच विकारों में जो फंसे हैं उन्हें निकालना है। अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। वरदान, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार के रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ते भव। सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ते भव। स्वप्न में भी किसी के पांच फरिश्ता आते हैं तो कितना खुश होते। किसी के वहां फरिश्ता आ जाए तो कितना खुशी आ जाती। तो बाबा कहते स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितने खुश होते हैं। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। फरिश्ते की निशानी सर्व के प्यारे, बेहद के प्यारे। जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं लेकिन सर्व के प्यारे। फरिश्ता क्या करे, सबको प्यार करता। जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं लेकिन सर्व के प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो लेकिन आपकी दृष्टि, आपकी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वह परवश है। स्लोगन, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। अभी हम सुनेंगे आज का अव्यक्त इशारा। आज 18 तारीख है। आज का अव्यक्त इशारा, सफलता का सितारा तब बनेंगे जब स्व की सफलता का अभिमान ना हो। कितनी बड़ी बात है। कुछ भी करते हैं ना तो अभिमान आ जाता है ना कि हमने किया तब हुआ। तो बाबा कहते हैं सफलता के सितारा तब बनेंगे जब स्व की सफलता का अभिमान ना हो और वर्णन भी ना करे। कोई कहेगा हमको अभिमान नहीं है लेकिन हम सुनाते हैं, सुनो। अरे क्या सुने, देख रहे ना। तो बाबा कहते हैं सफलता के सितारा तब बनेंगे जब स्व की सफलता का अभिमान ना हो, वर्णन भी ना करे, अपने गीत नहीं गाए। होता ना अपनी महिमा के गीत गाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं उनकी महिमा ना करो ना, बार बार पूछते रहेंगे, अरे ये क्या हुआ, मैंने कैसे किया। वो समझते हम भी गीत गाएं, लोग भी गाएं। तो बाबा कहते हैं अपने गीत नहीं गाएं, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्रचित, निर्माण निर्मल स्वभाव। दूसरे उसके गीत गाएं लेकिन वह सदा बाप के गुण गाए। दूसरे उसके गीत गाएं लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाए। ऐसी निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण कर नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति शांति ओम शांति। अभी तो डबल विदेशियों का ये ग्रुप जा रहा है, नया ग्रुप आने का समय आ रहा है। आप सभी को बता दें ज्ञान सरोवर में 20 तारीख से इनर पीस इनर पावर रिट्रीट का शुभ आरंभ होगा, जिसके लिए कई देशों से, खास करके कल भी बताया था, मिडिल ईस्ट देश से और एशिया कंट्री से आने वाले हैं। काफी गेस्ट आ रहे हैं, अच्छे अच्छे गेस्ट आ रहे हैं, और इसके साथ साथ ये ग्रुप के डबल विदेशी भाई बहने जा रहे हैं और दूसरे ग्रुप के भी डबल विदेशी भाई बहनों का भी आरंभ हो जाएगा। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। आज डबल विदेशी भाई बहनों का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन प्रोग्राम यही है कि बाबा के कमरे में और बाबा के साथ के विशेष अनुभव करते रहे। टुडे देयर इज नो प्रोग्राम फॉर डबल फॉरनेस बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल आर लिविंग टुडे और टुमारो, बट यू कैन एंजॉय बाबाज कंपनी इन बाबाज रूम एंड यू कैन हैव मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम पांडवन फ्रॉम बाबा। And because new group will start coming within few days, and now there will be IP retreat from 20th November. The guests will start coming by 19th evening or 20th morning. Okay, Om Shanti. अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे।